ओम शांति, शुभ प्रभात, नमस्ते, वेलकम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का विषय है कर्मों की गुह्य गति, गहन गति, या कहेंगे कर्म फिलॉसफी। ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का खेल चलता है। इस बेहद के नाटक में हर एक एक्टर का एक अनोखा पार्ट है, जिन्होंने इस नाटक को साक्षी होकर के देखने का अभ्यास कर लिया और परम पिता परमात्मा को साथी बना लिया, तो कैसी भी परिस्थिति में, कैसी भी सिचुएशन में, कैसे भी सर्कमस्टांसेस में, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। वो इस नाटक को परमात्मा को साथी बना के देखते हैं, तो नाटक कहता है देख नाटक पर ना अटक, अटको नहीं, भटको नहीं, इस खेल को खेल समझ करके देखो। इस खेल में दुख और सुख का खेल है ये। उस दुख और सुख का कारण क्या है? इंसान दुखी होता है तो क्या कहता है? हाय मेरे कर्म। दुखी जब होता है ना, कहता है हाय मेरी किस्मत। कर्म और किस्मत, तकदीर, भाग्य, ये अलग अलग शब्द यूज करते हैं। किस्मत क्यों कहा जाता है? किसकी मत पर काम किया था? कहते हैं इसकी किस्मत बड़ी ऊंची है, किस्मत फूट गई है। किस्मत किसकी मत पर चले? मन मत पर चले, पर मत पर चले, शास्त्र मत पर चले, या परम पिता परमात्मा सतगुरु की श्री मत का पालन किया? तो गीता ने, भगवान ने अर्जुन को श्री मत दी है श्रेष्ठ कर्म करने की, कर्म क्षेत्र पर कर्म करने की। और इस कर्म क्षेत्र पर, ये कर्म क्षेत्र कर्मों की खेती है। कर्म क्षेत्र, क्षेत्र माना खेती, फील्ड ऑफ एक्शन। और कर्म को बीज भी कहा जाता है। जिन बोजा बीजा तिन, जिन्होंने बोया उन्होंने पाया कर्मासंदा खेत। ये कर्मों की खेती है। जिन्होंने बोया, जैसा बोया ना वैसा पाया। कबीर साहब ने भी कहा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? अगर कांटे बोए हैं तो मिठास कहां से मिलेगी? दुख ही मिलता रहेगा। जैसा बीज वैसा फल। तो बीज है कर्मों की खेती के कारण, इसको बीज कहा जाता है। बीज है परंतु वो बीज संकल्प में पहले बीज है, सूक्ष्म बीज है, फिर एक्शन में आना। तो इसीलिए इसको कर्म कहा जाता है, कर्म फिलॉसफी। फिर कर्म में भी एक होता है सुकर्म, अच्छे कर्म, बड़ा ऊंचा भाग्य है क्योंकि भगवान की मत पर किया है, ऊंची किस्मत है। क्यों के परम पिता परमात्मा की श्री मत पर श्रेष्ठ कर्म किया है। जिससे जीवन की जो गति है वो सदगति, सदगति होती है, सत मार्ग पर स्पीड चलती है। लाइफ की जो गाड़ी है ना वो धक्के से नहीं चलती। कहते कैसे चल रहा है, चल रहा है जी जीवन, कैसे चल रहा है भी धक्के से चल रहा है। अब धक्के से चलेगा तो थकावट होएगी ना, फ्रस्ट्रेशन होएगी, परेशानी आएगी, बार 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 गाड़ी रुकेगी, डायरेक्शन नहीं ठीक है क्योंकि कनेक्शन नहीं ठीक है। जब परमात्मा से कनेक्शन नहीं ठीक है तो उसके जो डायरेक्शन, उनकी श्री मत है, उसकी पालना नहीं होती, मन मत पर चलते हैं और मन मत से धोखा मिलता है, दुखी होते हैं। तो इस कर्म क्षेत्र पर तीन तरह के कर्म हैं। कर्म तो करना ही है, कोई ऐसा नहीं कि कोई कर्म बगैर कोई रह सकता है। कर्म सन्यासी कोई होता ही नहीं है। बेशक सन्यासी घर छोड़ के चला जावे, गृहस्थ परिवार छोड़ के चला जावे, व्यापार छोड़ के चला जावे, फिर भी खाएंगे तो सही, नहाएंगे तो सही, सोएंगे, उठेंगे, बैठेंगे। कर्म इंद्रियां हैं तो कर्म तो करना ही है ना, परंतु कैसा कर्म करने का है। तो एक होते हैं सुकर्म यानी श्रेष्ठ कर्म, सुंदर कर्म, सत्य कर्म, ऊंचे कर्म, स्वधर्म में टिक करके किए गए कर्म, जिसको कहेंगे सोल कॉन्शियस में किए गए कर्म। आत्मा जो कर्म कर रही है उसको ये कर्म इंद्रियों का मैं आधार लेकर के कर्म कर रही हूँ, कर्म इंद्रियों का मालक बन करके कर्म कर रही हूँ। तो जब कर्म इंद्रियों का मालक आत्मा बन के कर्म करती है तो जीवन में सदगति होती है, जीवन मुक्त रहते हैं, जीवन में रहते जीवन मुक्त हैं। यानी आठ प्रकार की प्राप्ति है। देवताएं कर्मों की कोई गति नहीं है, श्रेष्ठ सदगति उनका जीवन है। तो तन का कोई रोग नहीं है, किसी को कोई तन की बीमारी होती है ना, कहते हैं पता नहीं कैसा कर्म का हिसाब किताब है। वहां सुकर्म है, श्रेष्ठ कर्म का स्वाभाविक रीति से कर्म का फल है। तन का कोई रोग नहीं है, मन की कोई अशांति नहीं है, मन का भी कोई रोग नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज है, स्वर्ग है ये सृष्टि। तन का रोग नहीं है, मन की अशांति नहीं है, धन का भंडार है, हीरे जड़ित महल है, तो धन का भी किस्मत बहुत ऊंची है, भाग्य ऊंचा है। श्री लक्ष्मी जिसको आज आवाहन करके समझते हैं थोड़ा धन मिला, जब लक्ष्मी जी राज करती होंगी तो कितना धन होगा। हीरे जड़ित महल, हीरे ऐसे हैं जैसे पत्थर, जैसे बिल्डिंग मटेरियल। धन के पीछे कोई पाप कर्म नहीं करता, कोई लोभ नहीं, वृत्ति नहीं है। तो इसीलिए वो जीवन जो है वो निर्विकारी जीवन है, क्योंकि निर्विकारी जीवन है तो कोई विकर्म नहीं करता। विकर्म का मतलब विकारवश किया गया कर्म। और सुकर्म क्या है, सत्य धर्म में टिक करके किया गया कर्म, स्वरूप में स्थित होकर के अपने आत्मिक रूप में स्थित होकर के किया गया कर्म। तो कर्म तो है ही है, कर्म के बिना तो मनुष्य रह नहीं सकता, पर कर्म की गति बड़ी न्यारी और बड़ी गहरी है। इसलिए सतयुग के अधिकारी बनने के लिए, जीवन मुक्त बनने के लिए कर्म की गति का ज्ञान चाहिए। तो मैं आत्मा सुकर्म करना है यानी श्रेष्ठ कर्म करना है तो कर्म इंद्रियों का पहले मालिक बन जावे। ये मेरे शरीर की आंख, मुंह, नाक, हाथ, पैर, ये ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं। तो जब कर्म श्रेष्ठ है, कर्म इंद्रियों का राजा बनकर के स्वराज अधिकारी बनकर के कर्म करते हैं तो ये कर्म इंद्रियां साथी बनती हैं, ये कर्म इंद्रियां सहयोग देती हैं, तन सुंदर रहता है, काया निरोगी रहती है। इसलिए आप देखेंगे देवताओं को सुंदर काया, लंबी आयु, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं, अपनी इच्छा से शरीर लेते हैं, तो उनको कहा जाता है अमर लोक के मालिक। ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ा नहीं, मृत्यु का भय नहीं है, अमर लोक है, अमर हो गए यानी मरने का डर खत्म हो गया। यहां जन्मते भी इंसान रोता रोता जन्म लेता है, मरते हैं तो पीछे रोने पीछे वाले भी रोते रहते हैं और खुद भी दुखी होकर के मेजोरिटी शरीर छोड़ता है। तो जन्म भी रोना और मृत्यु भी रोना और जीवन भर भी रोना, क्यों के कर्म विकर्म किए हुए हैं, विकारी कर्म किए हुए हैं, विकार वश कर्म किए हुए हैं। इसलिए उसको विकर्म, विशेष कर्म, वीक कर्म, कमजोर कर्म, सीधे शब्दों में कहते हैं भक्ति में खोटे कर्म, पाप कर्म। क्यों पाप कर्म किए? पाप क्यों होता है? जहां पिता परमात्मा बाप साथ नहीं है वहां पाप होता है। जब आत्मा का पिता आत्मा का बाप साथ है, वो बीच में है, तो पाप नहीं होता है। परमात्मा भूल गया, मैं आत्मा हूं ये भूल गया, पाप करना शुरू हो गया क्योंकि सेपरेशन हो गया। इसीलिए अपने आप को आत्मा समझ करके, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ, मैं आत्मा इस मुख से बोल रही हूँ, मैं आत्मा इस कर्म इंद्रिय से कर्म कर रही हूँ, तो ये कला आ गई ना। इसको जीवन की कला भी कह सकते हैं, पर जीवन की कला में कर्म फिलॉसफी को समझ करके जिए तो जीवन आनंद वाला जीवन हो जाएगा, सुख देने वाला जीवन हो जाएगा, सत्व प्रधान अवस्था वाला जन्म हो जाएगा, सुखी जीवन हो जाएगा। इसलिए देवताओं का तन का कोई रोग नहीं है, मन की न केवल रोग नहीं है, तन सुंदर है, आयु लंबी है, मन की कोई अशांति नहीं है। आज उनके सामने मंदिर में जाके कहते हैं मन की शांति दो, मन शांत टिका बनाने के लिए मन मना भाव, भगवान कहते हैं मेरे साथ मन जोड़ो। धन की तो कमी है ही नहीं, संबंध में सुख है, तो इसीलिए उनकी मंदिर में जाके कहेंगे सुख संपत्ति बढ़ाओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो जब सतयुगी जीवन है तो एकदम आपने सृष्टि चक्र तो समझा, ये ड्रामा भी समझा, और उसमें वो जो जीवन सतयुग और त्रेता वाला जीवन है वो श्रेष्ठ कर्म की प्रालब्ध है। ये खेती नहीं परंतु बाग है उस वक्त। तो एक होती है श्रेष्ठ कर्म की जब खेती है सुख कर्म, तो सुख कर्म है तो ये दुनिया क्या है, सुख धाम बन जाती है, जहां दुख का नाम निशान नहीं है, स्वर्ग कहलाता है, प्रकृति का भी सुख है, प्रकृति का कोई प्रकोप नहीं है, राजा का कोई भय नहीं है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सुख देने वाली प्रजा है। तो ऐसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, ऐसा राज्य में जाने के लिए अभी परमात्मा कहते हैं बच्चे अपने कर्मों को सुधारो। ऐसा कर्म न करें जिसमें कर्म इंद्रियां कर्मों के फल के कारण कर्म इंद्रियां कमजोर हो जावे या कर्म इंद्रियां श्रेष्ठ कर्म करना बंद कर देवे। आंख देखने के लिए है, परंतु अगर दोष दृष्टि, विकारी दृष्टि, नफरत की दृष्टि, वैर की दृष्टि, तो हम आंख को ठीक रीति से यूज कर रहे हैं? थोड़ा गहराई में जाओ। ये दृष्टि दिव्य दृष्टि है। देवताओं के मंदिर में जाकर के कहते हैं कृपा दृष्टि करो, दया दृष्टि करो, नजर से निहाल करो। आज हम अपने आप से पूछें, हम नजर से निहाल कर रहे हैं या किसी को नजर से दुख की दृष्टि, नफरत की दृष्टि दे करके बेहाल कर रहे हैं, घायल कर रहे हैं? वाणी से मधुर बोल बोल रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, महावाक्य बोल रहे हैं, सुवचन बोल रहे हैं, या मुख से जो है ये तीर की तरह, जबान से कमान की तरह, तीर कमान की तरह ऐसा बोल निकलता है जो दूसरे को चुभ जाता है और हृदय में जख्म हो जाता है? कहा जाता है कोई पत्थर मारे तो टांग टूट गई तो ठीक हो जाएगी कुछ महीने के बाद, पर जबान से जो पत्थर मारा ना, वो सारी उम्र ठीक होने में मेहनत लगती है। है तो छोटी कुदरत ने 32 किलो के दांतों के पीछे, किले के पीछे छोटी सी ये जबान रखी है, परंतु जब अहंकार वश बोलता है इंसान, विकार वश बोलता है, क्रोध वश बोलता है, तो तीर की तरह कमान में से तीर की तरह निकलती है, जाकर के दुख देती है। खाता है ऐसी चीज खाता है जो दुखी हो जाता है, फिर शरीर भी रोगी बन जाता है। लोभ वश खाता है तो, क्रोध वश बोलता है, लोभ वश खाता है, अंदर जो जा रहा है वो किस स्मृति से जा रहा है, किस कॉन्शियस से जा रहा है, बाहर जो निकल रहा है कौन सी वृत्ति से, कौन सी स्मृति से मुख से बोल निकल रहे हैं? कानों से सुनते हैं, गॉसिप सुन रहे हैं या प्रभु की महिमा सुन रहे हैं? किसमें आनंद ज्यादा आता है? जिंदा चुगली करने बैठेंगे तो 4 घंटे भी बीत जाएंगे, भगवान की बातें सुनेंगे जल्दी थक जाएंगे, नींद आ जाएगी। ये बहुत सूक्ष्म फिलॉसफी है। आत्मा रूप में अगर हम अस्थित हैं, मैं शरीर से न्यारी आत्मा हूं, इस खेती पर कर्म करने के लिए आई हूं, तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म करूं जो कर्म का फल सुख मिले। तो 3 तरह के कर्म है, सुकर्म यानी श्रेष्ठ कर्म, विकर्म यानी विकारी कर्म, और अकर्म न्यूट्रल कर्म, न्यारे कर्म। देवताएं के कर्म अकर्म है, नेचुरल पवित्र कर्म है, नेचुरल दृष्टि दिव्य दृष्टि है, नेचुरल चेहरा दर्शन मुहूर्त चेहरा है, नेचुरली जो दिव्यता है दर्शन देकर के प्रसन्न करने वाले फीचर्स हैं। तो ऐसा अब भी हम संगम, ये वक्त ऐसा है, परमात्मा हमको हमारे कर्म जो हैं इस कर्म क्षेत्र पर अच्छे कर्म होवे, सुकर्म होवे। उसमें भी अब सुकर्म तब परमात्मा की श्री मत से कर्म करते हैं और अपने आप को आत्मा निश्चय करके कर्म करते हैं। सुकर्म श्रेष्ठ कर्म, सुंदर कर्म, स्वधर्म में टिक करके कर्म, तो मुझ आत्मा का धर्म शांति है, मुझ आत्मा का धर्म पवित्रता है। तो पवित्र वृत्ति से, पवित्र दृष्टि से, वृत्ति से पहले धरती तैयार होती है। जैसे बीज बोते हैं ना, तो पहले धरती तैयार होती है। तो जैसी मन की वृत्ति है, जैसी मन की भावना है, वैसा बोल होएगा, वैसी दृष्टि होएगी, वैसा कर्म होएगा, वैसा व्यवहार होएगा, फल उसका उसी अनुसार होएगा, दुखी और सुख का। तो ये बड़ी सूक्ष्म पहले बात है कि हमारी जो धरती हम तैयार कर रहे हैं या उबड़ खाबड़ वाली है, पत्थर वाली जमीन है, कितनी मेहनत करेंगे पथरीली जमीन में फल नहीं उगेगा। तो अंदर की धरती को तैयार करना, यानी हृदय में प्रभु प्रेम का जल डालना और मन की वृत्ति को शुद्ध रखना है, तो हमारे कर्म जो हैं वो श्रेष्ठ कर्म होंगे, ऊंचे कर्म होंगे, सुखदायी कर्म होंगे, सुख देने वाले कर्म होंगे, सुख लेने वाले कर्म होंगे। कोई भी विकार वश किया हुआ कर्म विकर्म दुखी कर देता है अथवा बंधन में बांध देता है। तो बंधन मुक्त आत्मा बन के रहना है। बंधन में कोई खुशी नहीं है, जेल में कोई खुशी नहीं है। कर्मों का बंधन, कर्मों की जैसे जाल में फंस गए। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे अभी जो कर्म कर रहे हो ना, वो इस बात पर ध्यान दो जो कर्म कूटने ना पड़े। वहां मेरी तकदीर, वहां मेरा भाग्य, यानी भगवान की मत पर मैं कार्य कर रहा हूं। श्रेष्ठ कर्म करके तकदीर की लकीर, भगवान कहते हैं मैं आपके हाथ में कलम दे देता हूं, आपके हाथ में पेंसिल दे देता हूं, श्रेष्ठ कर्म की अपनी तस्वीर ऐसी बनवाओ, बनाओ जो दूसरों की तकदीर बना देवे, ऐसी तस्वीर अपनी बनाओ। कोई कहते हैं अच्छे कर्म तो कर रहे हैं, पर हम क्या करें, जो जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो तो दुखी हो रहे हैं और जो पाप कर्म कर रहे हैं वो तो मौज मना रहे हैं। हम तो रोज देखते हैं यही, जो विकारी है, भ्रष्टाचारी है, उल्टे कर्म कर रहा है, बड़ी पोजीशन पर बैठा हुआ है, मौज मना रहा है, और जो बेचारे धर्म आत्मा है, बड़ा डर डर के कुछ कर्म करते हैं, वो तो दुखी हो रहे हैं। कोई उल्टा कर्म करते भी नहीं तो भी दुखी हो रहे हैं, तो क्या ये इंसाफ है क्या? अब ये थोड़ा समझने की बात है, ऐसा क्यों है? भगवान के घर में अंधेर नहीं है। कहा जाता है देर है पर अंधेर नहीं है। उसका मतलब क्या है कि कर्म की फिलॉसफी में तीन तरह की कर्म जैसे है ना, कर्म सुकर्म विकर्म अकर्म, ऐसे एक तीन तरह के कर्म होते हैं। एक होते हैं इंस्टेंट कर्म, तत्क्षण कर्म, दूसरे होते हैं शॉर्ट टर्म कर्म, यानी किया और थोड़े वक्त के बाद फल दिखता है। तीसरे होते हैं लॉन्ग टर्म कर्म, काफी समय तक इंसान कर्म करता रहता है, पीछे उसका फल निकलता है। जैसे खेती है ना, कर्मों की खेती, जिन बोझा बोया तिन पाया कर्मा संदा खेत। तो खेती में एक होती है खेती, दूसरा होता है, एक होता है बगीचा, दूसरा है खेती, तीसरा है बाग। तो अगर आप बगीचे में फल लगाएंगे ना, बड़ी जल्दी फूल फल, एक ही वीकेंड पर आपने फूल भी लगाए, मेथी धनिया भी बो दिया, सब्जी भी लगाई, उसी वीकेंड पर अनाज भी बोया, और उसी वीकेंड पर आपने फल भी लगाया, तीनों एक ही वक्त, चारों चीजें एक वक्त निकलेंगी क्या फल? एक वक्त निकलेगा नहीं, क्यों? कि जैसी जैसी बीज की क्वालिटी है, जैसा जैसा सीजन है, उस अनुसार फल निकलेगा ना। तो फूल जो है वो तो इमीडिएटली प्रकट हो निकलते हैं। फूल जो है ना थोड़े वक्त के, कुछ वीक्स के बाद ही फूल जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से खिल जाएंगे। मेथी धनिया भी जल्दी निकल आएगा, सब्जी उगने में टाइम लगेगा, अनाज में कुछ महीने लग जाएंगे, और बगीचा फल कुछ साल लग जाएंगे। बोया तो उसी वक्त था ना। तो ऐसे कोई समझते हैं कि जो पाप कर्म कर रहे हैं वो तो मौज मना रहे हैं, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो दुखी हो रहे हैं। तो अच्छे कर्म कर रहे हैं डर डर के, कोई उल्टा कर्म डर के मारे भी नहीं करते, समझ से भी नहीं करते, तो भी दुखी हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे कर्म के कारण दुखी हो रहे हैं, नहीं, वो पिछले कर्मों का फल है, कोई पिछले कर्मों का हिसाब किताब है। कर्मों का खेती भी कहा जाता है, तो खेती का मतलब अब भी कोई पिछला बोया हुआ कर्म अभी सामने आया है, और खेती और फिर हिसाब किताब कर्मों का लेखा जोखा, लेन और देन, तो लेखा जोखा अथवा हिसाब किताब, यानी कोई किताब में वो हिसाब बाकी देना बह रह गया, अभी चुकतू हो रहा है। तो कोई मिसाल के तौर पर अभी आप देखो किसी को अच्छा कुछ करो ना, खुशी होती है, इंस्टेंट खुशी होती है। थोड़ा अच्छा स्नेह से एक दूसरे व्यवहार करें, किसी को कोई गरीब को मदद कर दी, कोई छोटा बच्चा भी किसी अंधे को बुजुर्ग को हाथ पकड़ करके सड़क पार करवाए, खुशी होती है, मैंने उसको मदद की। छोटा मोटा काम भी करो खुशी होती है, फल जैसे फूल निकल गया, खुशी हो गई, खुशबू आ गई रूहानियत की, वर्च्यूज की, वैल्यू की। शॉर्ट टर्म में आदतें, हमारे स्वभाव का कनेक्शन होता है। मिसाल के तौर पर किसको सिगरेट पीने की आदत है, शराब पीने की आदत है, जुआ खेलने की आदत है, उल्टे संग में कोई कर्म करने की आदत है, कुछ वक्त छिपा के रखेगा, आकर छिपेगा नहीं। खान पान लोभवश खाने की आदत है, चलो अच्छा, समझ से नहीं शरीर को चला रहे हैं, अरे मुझ मीठा बहुत अच्छा लगता है, घी बहुत अच्छा लगता है, पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, चिप्स अच्छे लगते हैं, तो खाया तो सही। अच्छा, प्रकृति के हिसाब से जितना शरीर को ठीक लगे उतना वो ठीक होगा, ज्यादा अगर ले लिया तो हिसाब किताब में प्रकृति ब्लॉक कर देती है, शरीर रोगी हो जाता है। जो चीज आपको बहुत अच्छी लगती थी, घी के परांठे, घी की चीजें, मिठाई बहुत अच्छी लगती थी, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर वही चीज मना करता है जो आपको बहुत अच्छी लगती थी, हिसाब किताब हो गया ना। जितना प्रकृति को चाहिए अगर ध्यान से नहीं लिया तो वो जो एक्स्ट्रा दे दिया वो एक्स्ट्रा वापस देना पड़े, जो ले लिया ना प्रकृति से एक्स्ट्रा देना पड़े, ब्लॉक कर दिया। प्रकृति अपनी रक्षा करती है, शरीर अपनी रक्षा अपने आप करता है, क्यों? कि शरीर पांच तत्वों की प्रकृति की देन है। कहने में आई बीमारी, परंतु एक परहेज रखनी पड़े, अभी लिमिट रखनी पड़े, नहीं लिमिट रखी, परहेज नहीं किया, फिर और बीमारी होगी, थोड़े समय के बाद उसका रिजल्ट निकला, भाई अभी नहीं खाने का है, खाते रहे मौज मनाते रहे, आखिर हृदय रोग हो जाएगा, किडनी का रोग हो जाएगा, धन भी जाएगा, तन भी बेरोगी हो गया, कर्म का हिसाब किताब बना। सारी दुनिया कर रही है, हमने किया तो क्या हुआ, पर सारी दुनिया दुखी हो रही है, हम भी दुखी हो गए, इसको समझ तो नहीं कहेंगे ना। तीसरा जो है, समझो कई सेकंड तरह की बात अगर देखे शॉर्ट टर्म में, चलो कोई लापरवाही से ऑटोमेटिकली काम करते रहते हैं तो गवर्नमेंट को लाभ बनाने पड़ते हैं, भाई उल्टा कर्म किया तो जेल में डालेंगे, या ऑटोमेटिकली दंड भोगना पड़ता है, चलो लापरवाही है टिकट नहीं ली, अरे कंडक्टर कोई रोज थोड़ा ही आता है, चलो ले ले, नहीं लेते हैं टिकट, दो बारी नहीं लिया, तीसरे बारी पकड़ा गया, 6 महीने का पैसा देना पड़ेगा, हिसाब किताब हो गया हम तो, यानी ये ऑटोमेटिकली ये हिसाब किताब जो है वो कर्म फिलॉसफी में, यानी वो बहुत समय तक नहीं चलता, इसको शॉर्ट टर्म, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे धन के कोई घाटे के रूप में, चाहे कोई शरीर के हिसाब किताब में लेन देन के रीति से, आखिर इसी जीवन में, शॉर्ट टर्म में ना, इसी जीवन में जो बोया है वो धीरे 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 रिजल्ट प्रत्यक्ष होने लगता है, दबा के रख भी ले ना, छिपेगा नहीं, छिपेगा नहीं, क्यों कि कर्मों के हिसाब किताब में वो प्रत्यक्ष हो जाता है। तीसरा है लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में है भले पाप कर्म भी किया, भ्रष्टाचार भी किया, उल्टे उल्टे कर्म भी किए, बहुत पोजीशन से पुलिस को भी खिला के CID को भी प्रभावित करके बच गया, कंट्री छोड़ के चला गया, परंतु कर्म फिलॉसफी के CID जो है ना, कर्म फिलॉसफी के पुलिस जो है, इंस्पेक्टर जो है, CID है, वो दूसरे जन्म में भी चली जाती है, भले कंट्री छोड़ के कपड़ा बदली कर लेवे, शरीर छूट जावे, तो भी दूसरे जन्म में, अभी आप छोटे छोटे बच्चे हैं हॉस्पिटल में, आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, किसी की किडनी खराब है, किसको हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम है, किसी की कोई डिसेबिलिटी है, माँ बाप वही है, ट्विन्स बच्चे पैदा होते हैं, एक बीमार रहता है एक ठीक है, एक ही घर में 4 बच्चे हैं, एक की हेल्थ ठीक नहीं है, एक की ठीक है, खान पान तो वही मिल रहा है, माँ बाप की कंपनी भी वही मिल रही है, सुख सुविधाएं भी वही मिल रही हैं। कहता कि पिछले कर्मों का फल है, तो ऐसा नहीं कि कोई इसी जन्म में किया, अभी तो छोटे बच्चे हैं, कर्म तो कोई किया ही नहीं, पर कर्म लेके आया, कर्मों का फल अभी इस जन्म में लेके आया, कुछ माँ बाप के साथ भी संबंध है, कभी कभी माँ बाप के कर्म का हिसाब किताब, कुछ ऐसा धोखा दिया, कुछ ऐसे कर्मों का हिसाब किताब किसी के साथ बना, अभी बच्चा बन करके आया है, डिसेबल है, तो जबरदस्ती तन भी देना पड़ेगा, वक्त भी देना पड़ेगा, धन भी खर्च करना पड़ेगा, और सहनशीलता धैर्य भी रखना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ रहा है अगर, और ये ड्रामा में बिल्कुल बहुत गहरा राज है, पता नहीं कि ये मेरा दोस्त था कि दुश्मन था, धोखा दिया था या धोखा लिया था, उस कर्मों का लेन देन दे रहा हूं, नहीं तो और भी देना मुश्किल हो जावे, तो बहुत गहरी फिलॉसफी है, ताकि जो मिसयूज किया है ना वैल्यूज को, वो फिर से वैल्यू को बैलेंस करने का, ये ऑटोमेटिकली कर्मों का गहरा हिसाब किताब है, फिर जो है वो ये द्वापर से विकर्म राज्य शुरू हो जाता है, ये सुकर्म विकर्माजीत का राज्य है, सतयुग त्रेता में विकर्म कोई है ही नहीं, विकर्माजीत है, विकर्म जीते हुए हैं, विश्व महाराजा विश्व महारानी का राज्य, तो सतयुग त्रेता सुख धाम है, कर्म अच्छे हैं, तो अभी जाकर के उनसे कर्मों की सुगति मांगते हैं, कर्मों के कृपा दृष्टि मांगते हैं, फिर द्वापर से आते हैं तो यही श्रेष्ठ कर्म वाली आत्माएं देह अभिमान में आती हैं, तो विकारी कर्म करना शुरू करती है, विकर्म कर्म, विकर्म विकारों वश कर्म हो जाते हैं, वो जो पहले कर्म थे शांति प्रेम पवित्रता आनंद समझ ज्ञान शक्ति से संपन्न कर्म थे, तो सुकर्म क्या है, सुकर्म में स्वधर्म है, और स्वधर्म की शक्ति में 5 गुण हैं, ज्ञान शांति प्रेम पवित्रता और सत्यता, इसीलिए वो सत्यता से कर्म है, ज्ञान समझ से कर्म है, शांति और धीरज से कर्म किया हुआ है, प्रेम से कर्म किया है, पवित्रता के बल से कर्म किया है, सत्यता के बल से कर्म किया है, इसलिए निर्भय है। निर्वैर होकर के कर्म किया, किसके साथ वैर भाव होकर के कर्म नहीं किया, तो वो कर्म सुखदायी कर्म है, सुख धाम के मालिक बनते हैं। इसलिए सुख कर्म है, विकर्मा जीत है, विकर्मों को जीता हुआ है। और फिर द्वापर में आते हैं तो ड्वैलिटी आ गई, द्वापुर दो पुर हो गए, कर्मों की खेती में दो भाग हो गए, इधर भक्ति करके पुण्य कर्म करके थोड़ा दान करके टेम्पररी खेती लगाना शुरू किया, उधर विकर्म करना शुरू करते हैं, पाप कर्म देह के भान में आ गए। वो जो आत्मिक कर्म था वो भूल गया, देह भान और देह अभिमान आया, और अभिमान में दूसरे का अपमान करना शुरू कर दिया। अभिमान, अभी मेरी बात मान, नहीं मानेगा गुस्सा आ जाएगा, नहीं मानता है थप्पड़ मार दिया, नहीं मानता है मुख से कुछ न कुछ उल्टा बोल दिया। तो अभिमान में अपमान करना शुरू करते हैं, विकारी कर्म करना शुरू हो जाता है, काम वासना वश कर्म, क्रोध वश कर्म, लोभ वश कर्म, मोह के वश पाप कर्म, अहंकार के वश पाप कर्म, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश किए हुए कर्म को विकर्म कहा जाता है। विकर्म यानी विकारी कर्म, विशेष कर्म, पाप कर्म, असुरी कर्म, खोटे कर्म। वो खोटा पैसा है, वो ज्यादा सिक्का चलेगा नहीं, धोखे से चलेगा, सच्चाई से नहीं चलेगा। तो विकार वश किए गए कर्म को विकर्म कहा जाता है। अभिमान के वश किया गया कर्म निर्दयता से कर्म होता है, दूसरे को दुख देगा, दया भाव नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। वो दया भावना, अभिमान में दया भावना नहीं है। क्यों? वो याद भूल गई, अभिमान आना शुरू हो गया, तो विकर्म करना शुरू किया, तो ये दुनिया दुख की दुनिया शुरू हुई। अब विकर्म विस्मृति हो गई ना, क्यों विकर्म किया? स्वधर्म की विस्मृति हो गई, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दिव्यता थी, उसमें ड्युअलिटी आ गई, आत्मा के बदले अपने आप को जिस्म समझने लगे, और दे अभिमान वश, अहंकार वश, काम विकार वश, क्रोध वश, लोभ वश, दृष्टि से भी, वृत्ति से भी, कर्म इंद्रियों से भी, जबान से भी पाप कर्म करना शुरू किया। अब वो पिछला जो पाप किया हुआ इस जन्म में, इसी जन्म जन्मांतर ऐसे करते आ रहे हैं, तो कोई कहते हैं ना हम दुखी हुए, तो इस जन्म के कर्म की फल नहीं, इस जन्म अच्छा कर्म किया है, पर डर लगता है पाप कर्म ना करें, पर पास्ट कर्म का जो बगीचा था, जो लगाया था ना पेड़, अभी इस जन्म में जो पेड़ लगाया है ना पाप कर्म का, पिछले जन्म का, द्वापर से कलयुग तक इसी जन्म में जो पाप कर्म करते चले आए, उसका फल दुख है। इस पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, बहुत अच्छी शिक्षा है कि जो अच्छा कर्म कर रहा है वो सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, जो पाप कर्म कर रहा है वो सुखी हो रहा है। तो एक बार की बात है, दो छोटे बच्चे थे, एक ही पड़ोसी थे, एक बहुत साहूकार घर में, प्रिविलेज, धन भी बहुत था, पोजीशन भी माँ बाप की अच्छी थी, पढ़ाई की भी सुविधाएं थी, सब सुख साधन थे, घर में बच्चा जन्म लिया। पड़ोसी था, उसके घर में भी बेटे ने जन्म लिया, पर पड़ोसी बहुत बेचारा गरीब, पर बड़ा भगत, कुछ भी उल्टा काम नहीं करना है, सेवा भाव वाला, दया भाव वाला, निर्माण भाव वाला था। अब बच्चे तो दोनों पड़ोसी बच्चे हैं, बचपन से बच्चे खेलते, दोनों आपस में दोस्त बन गए। धीरे धीरे बड़े हुए तो वो जो धन संपत्ति वाला था उसको आदतें बुरी पड़ गई, बुरी आदतों वश इधर उधर उल्टा कर्म करना शुरू किया। वो दोस्त को थोड़ा इनकरेज करता था, अरे खाओ पियो मौज करो, लाइफ किस लिए, आनंद मनाने के लिए तो है। पर वो जो बच्चा था वो डरता था, कहता था नहीं माँ बाप मुझे उल्टा कर्म नहीं करना है, मुझे माँ बाप को दुखी नहीं करना है। माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल रहता था और अपने अंदर भी होता था उल्टा कर्म नहीं करना है। मेरे बापूजी मामा तो मुझे यही सिखाते हैं धर्म का काम कर। वो रोज मंदिर गुरुद्वारे जहाँ भी जाता था वहां सेवा करके आता था, सेवा भावना जबरदस्त थी। थोड़ी पैसा नहीं था, थोड़ी जो माँ बाप से मिलता था उसमें से किसी गरीब को दान करता था। रोटी भी लेके जाता था स्कूल में तो जो तो अपनी रोटी होती थी किसी के पास नहीं होती थी उसको कहता था तू थोड़ी खा ले। अंदर की भावना दया वाली भावना थी। अच्छा अब दोनों दोस्त थे बड़े हुए यंग एज में आए, उल्टे कर्म जो उल्टा कर्म कर रहा था वो जो दूसरा दोस्त एनकरेज किया पर इसको हिम्मत नहीं होती थी, जो दुखी था यानी गरीब था, बहुत कोई सुख सुविधा नहीं थी उसके हिसाब से, गरीब शाहूकार के हिसाब से वो समझता था ये गरीब है दुखी है। पर वो अंदर से दुखी नहीं था, संतुष्ट था, जो मेरा जीवन है मेरे कर्म का हिसाब किताब है ठीक है। पर दोनों की दोस्ती बड़ी जबरदस्त थी, आपस में दुख सुख की लेन देन करते थे और बीच बीच में दोस्ती के कारण कभी बैठ के जब लेन देन करते थे। तो एक बारी ऐसा हुआ दोनों ने अपना विचार किया कि अच्छा आज स्कूल का स्कूल भी एक था पढ़ाई थी तो ये काम मैंने किया चलो मिल करके करेंगे। पढ़ाई भी कच्ची वो अच्छी पढ़ता था जो गरीब लड़का था क्योंकि संग खराब नहीं था बहुत अच्छी तरह से पढ़ता था तो मदद भी एक दो के करते थे। तो उसने कहा कि चलो अच्छा तुमको जहाँ जाना जाओ, मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ मंदिर जा रहा हूँ सेवा करने, मैं सेवा करके आऊंगा फिर हम आपस में पढ़ाई का काम भी करेंगे थोड़ा रिवाइज करेंगे क्या पढ़ाई मिली है। एक पेड़ के नीचे उन्होंने बैठने का फैसला किया। अब वो जो लड़का था जो खराब काम करता था वैश्या के पास कोई किसी गंदे काम के लिए गया, वहां लड़ाई हो गई झगड़ा हो गया काम नहीं बना, दुखी होकर के वापस आ गया। अब दोस्त तो गया गुरुद्वारा मंदिर वो तो सत्संग वो तो गया सेवा करने, वो तो जब अपना काम पूरा करके तब आएगा। तो ये जो लड़का था जो शाहूकार घर का था खाली बैठा क्या करे, तो एक पेड़ के नीचे जहाँ बैठा था एक थोड़ा लोहे की डंडी दिखाई पड़ी, लोहे की चीज थी तो ऐसे ही जमीन से खेलना शुरू किया भाई, थोड़ा थोड़ा जमीन खोदना शुरू किया। खोदा तो उसको लगा इस धरती में कुछ है, ऐसा उसको लगा कि कुछ है इसके नीचे थोड़ा और खोदूं। खोदा परंतु वो तो लोहे का थोड़ा सा सिर्फ डंडी जैसा ही था। गया एक स्पेड खरीद के ले आया, समझो खोदने का चीज लेकर के आया। खोदा जमीन तो उसमें से एक ब्रास का मटका निकला, खोल के देखा तो उसमें वो कोयलों से भरा हुआ था पर थोड़े उसमें गोल्ड के सिक्के थे। कहा अच्छा अरे मुझे गोल्ड मिला है, इसका मतलब भगवान मेरे से बड़ा खुश है। अभी वो इंतजार करने लगा दोस्त का, भाई आवे दोस्त, पता नहीं दोस्त, उसको और भी देर हो गई। वो जो दोस्त गुरुद्वारे में मंदिर में जाता था सेवा करने, कहा आज क्या हुआ है इसको, शायद उसको भी कुछ हीरे मिले होंगे जो पता नहीं कहाँ चला गया आ नहीं रहा। पर कहा नहीं ये तो बड़ा ईमानदार है और बड़ा ट्रस्टवर्दी है, जरूर आएगा सही, संभाल के आता होगा। इंतजार करता रहा तो दूर से देखा लकड़ी लेकर के पैदल चल के आ रहा था और पैर में पट्टी बंधी हुई थी, धीरे धीरे चल रहा है पैर में पट्टी बंधी हुई है। आया का क्या हुआ, अरे कहा भगवान की कृपा, उस वो जो मंदिर गया था भगवान की कृपा हो गई, मेरा तो जीवन बच गया। मैं सफाई कर रहा था, ऊपर से ईंट गिर गई, मोर मंदिर गुरुद्वारा पुराना था तो ईंट गिर गई पर मेरे सिर पर नहीं लगी, वो यहाँ आकर के लगी तो मेरी टांग पर बहुत जबरदस्त जो है वो चोट लगी है। तो मैं थोड़ा इलाज पट्टी बंधवाने गया था, फिर भी मुझे ये ख्याल था कोई ऐसा नहीं लगा जो मैं चल नहीं सकता था, चल सकता हूँ तो धीरे धीरे चल रहा था। तो मेरा ख्याल तो तेरे लिए दोस्त में था कि तू मेरा इंतजार करता होगा। तो एक किक्कर था, किक्कर का कांटा, किक्कर टूटा हुआ पड़ा था कांटा, वो मेरे पैर में दूसरे पैर में कांटा चुभ गया। अब वो कांटा जो किक्कर का कांटा इतना जबरदस्त सुई जैसा था वो टूट गया अंदर। अब वो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो मेरी तो दोनों ही टांगे उधर के, उधर ये पत्थर लगा जो गिरा, इधर कांटा चुभ गया। तो जरूर मुझे बहुत धीरे धीरे आना पड़ा। उसने कहा देखा भगवान तेरे से नाराज है, तेरी तो टांग तोड़ दी, कांटा चुभ गया। मेरे को देख तू कहता है, हमेशा कहता है अरे तू उल्टा काम कर रहा है, तुझे भगवान खुश, भगवान नाराज हो जाएगा। देख मेरे से तो भगवान खुश हो गया, इसका मतलब मेरे से भगवान राजी है, मैं उल्टा काम नहीं कर रहा हूँ, तू उल्टा काम कर रहा है। उसने कहा नहीं मैं उल्टा तो नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे मालूम नहीं, ये मेरा, मुझे तो ये पता है कि भगवान ने मुझे बचा लिया, समझो मानो इतना पता नहीं सिर पर लगती तो क्या होता, ये तो सिर्फ थोड़ा टांग पर लगा है, नील पड़ गया है, थोड़ा सा चोट लगी है, कंपेयर तू पता नहीं सिर में लगता तो क्या हो जाता। कहा नहीं फिर भी दंड तो मिला। अब उसने उसके अंदर संशय पैदा कर दिया, उसके मन में आया ये रोज कोई ना कोई उल्टा काम करता है फिर भी इसको सोने की मोहरे मिली, और मैं तो भगवान की इतनी सेवा करता हूँ और मेरे को ये क्या हुआ, क्यों भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। परंतु फिर भी अंदर निश्चय था कि नहीं भगवान कुछ नहीं कर सकता, उल्टा कर्म नहीं, भगवान ने मुझे दंड नहीं दिया, कोई मेरे कर्मों का खेता हो खेती ऐसी होगी। माँ बाप ने सिखाया था दोष किसी चीज को नहीं दो। खैर वो चल रहे थे, थोड़ा उसको मायूसी तो थी उसके मन में, पर निश्चय नहीं टूटा था, भगवान में विश्वास फिर भी रखा, पर अंदर खुशी थोड़ी जो था ना वो सेवा की खुशी थोड़ी कम हो गई। रास्ते में चल रहे थे तो एक दूसरा दोस्त मिला, वो दूसरा जो दोस्त था, तीसरा दोस्त था जो था वो हाथ देखता था, ज्योतिषी था। उसने दोनों का हाथ देखा तो जिसने जिसको टांग में चोट लगी थी, कांटा चुभा था, उसका हाथ देखा तो कहा अरे तू तो बड़ा ही भाग्यशाली है, किस्मत तेरी बड़ी ऊंची है, बहुत कुछ तेरे को लाइफ में मिलने वाला है, तेरा तेरे ऊपर एक बहुत ऊंची छत्र छाया है। और दूसरे का हाथ देखा, कहा इसको लाइफ में बहुत घाटा है। उसने कहा तेरी ज्योतिषी खराब, लाइन रॉन्ग, मेरे को तो और ही मोहरे मिली हैं, इसको तो देख मार मिली है, मेरे को सोने की मोहरे मिली है, सोने की गिन्नी मिली है, इसको तो भगवान से मार मिली है, किसका किसका भाग्य ज्यादा अच्छा। उसने कहा नहीं मेरी रीडिंग में ज्योतिषी बहुत समय से हूँ, बहुत ध्यान से मैं हस्तरेखाएं देखता हूँ, किस्मत इसकी अच्छी है, तुम्हारी किस्मत खोटी है। उसने कहा कि अच्छा तुमको मेरे पर विश्वास नहीं होता तो चलो, हमारा एक चौथा दोस्त है, उसका भी एक दोस्त था, उसने कहा जो मैं अब भी समझता हूँ, मैं तो सिर्फ हाथों की रेखा देख करके बताता हूँ कर्मों का हिसाब किताब, पर मेरा जो दोस्त है वो पिछले जन्म में यानी भेजता है जो ने हिप्नोटिज्म करके पिछला जन्म, पिछले से पिछला जन्म वो हिप्नोटाइज करके, जैसे रिग्रेशन होता है पीछे लाइफ में भेजता है, और फिर वो इंसान बोलता है अथवा पिछला सीन ही मर्ज हो जाता है, चलो उस दोस्त के पास चलते हैं। चलो जी तीनों उसके पास गए। जब उसके पास गए तो उन्होंने उसको दोनों को हिप्नोटाइज किया, दोनों दोस्तों को। वो क्या हुआ कि दो तीन जन्म पहले यही दोनों दोस्त जो एक शाहूकार के घर में बहुत सुख सुविधा वाले के घर में पैदा हुआ था और गरीब के घर में पैदा हुआ था, ये दोनों दोस्त एक ही शहर में रहते थे, पर मित्रता आपस में थी। तो वो जो जिसके पास जिसको धन मिला था ना, मिले थे सोने की गिन्नी थी और मटका बाकी भरा हुआ कोयलों का था, तो उसका बताया कि वो बहुत धर्मात्मा था, बहुत दयालु था, दान पुण्य करता था, गरीबों की मदद करता था, अपनी त्याग भावना करके भी दूसरों को सहयोग देता था, पुण्य कर्म अच्छे किए थे। जब शरीर छोड़ने से पहले, क्योंकि सारे शहर में वाह वाह हो गई, बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा पुण्य आत्मा है, अरे भगवान हमारे लिए तो जैसे भगवान का अवतार है, तो वो अपनी महिमा सुन सुन करके उसको थोड़ा अहम भाव आ गया कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है। तो अभी उस भाव में उसको भूल गया कि ये तो मेरा भाग्य है। वो अहम भाव में शरीर छोड़ा, मैंने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत पुण्य कर्म कमाया है, बहुत जमा हुआ है, भगवान का शुक्रिया नहीं किया परंतु जो सभी महिमा थी ना उसको स्वीकार कर लिया। शरीर छूटा, अंतमति सोगति, कर्मों का हिसाब किताब फल तो मिलना है जरूर, परंतु बुद्धि में जो था ना अहम भाव से लापरवाही आ गई, मैंने बहुत कुछ जमा कर लिया। वो जो दूसरा था दोस्त जिसको कांटा लगा था और पत्थर लगा था, वो जो दूसरा दोस्त था वो बहुत सिर्फ करप्ट विचारों का था, दुष्ट संस्कारों का था, धोखा देने वाला, पैसे वाला था पर पैसा इकट्ठा किया था धोखा देके, किसी न किसी को का लिए उल्टा कर्म करके, डरावा दे करके, भ्रष्टाचार से वो कर्म जो किया उल्टा, यानी पैसा तो कमाया, पोजीशन भी कमाई, कमाई तो की परंतु अच्छे तरीके से नहीं की, पोजीशन भी ली परंतु कोई ना कोई पुलिस का सहारा लेकर के, किसी न किसी का सहारा, यानी गलत तरीके से उसने पोजीशन भी कमाई, धन भी कमाया, रौब भी जमाया, लोग डरते थे उससे। अब अंदर की सच्चाई तो सामने आती है, मरने समय उसका सारा जो खाता था वो फिल्म की तरह उसके सामने आने लगा। जब बीमार था शरीर छोड़ने से पहले वो सारी फिल्म अपनी जीवन की सामने आई और बहुत पश्चाताप से, जिक्र से भगवान के सामने प्रार्थना की, हे भगवान कुछ भी हो जाए अभी मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा कर्म फिर नहीं करूंगा। अंतमति सागति, वो पश्चाताप और भगवान के दिल से क्षमा मांगने के लिए उसी भावना से शरीर छोड़ा। अब कर्मों का तो हिसाब किताब है, कोई अभी कमाया ही उल्टे तरीके से है तो मिलेगा तो नहीं, कमाई भले वो धन भी छूट गया, पोजीशन भी छूट गई, पर संस्कार जो था पश्चाताप का और नम्रता का वो साथ में आया। अब दोनों के हिसाब किताब से उसने कहा कि ये जो था, इसको जो गरीब घर में जन्म लिया, उसके कर्मों के हिसाब किताब से चाहे इस जन्म में कोई उल्टा कर्म नहीं किया, अभी गरीब घर में बहुत अच्छा दान किया है, पुण्य किया है, तो वो जो कर्मों का हिसाब किताब था वो जैसे कि चुकतू किया, पर पिछले कर्मों के फल में बेगुनाह ये पकड़ा जाने वाला था और इसको फांसी की सजा। अभी पुण्य कर्म किया तो बहुत चुकतू हो गया, सेवा किया, दान किया, भला किया, विकारी कर्म कोई नहीं किया, उसको डर लगता था, उल्टा कर्म करूंगा। वो डर, वो जो अंदर पिछले कर्म का जो था ना डर, डर था, कोई उल्टा कर्म नहीं करता था, और हिम्मत थी दोस्त को कहने की मुझे उल्टा कर्म नहीं करना है। तो बंद हो गया ना पिछले कर्म का खाता, अभी कंटिन्यू नहीं हुआ, चुकतु भी होता गया, परंतु बहुत कड़ा कर्म था। तो इस जन्म में इसको किसी न किसी धोखे में आकर के फांसी की सजा मिलने वाली थी। पर ये जो उसने धीरे धीरे कतरा कतरा करके थोड़ा थोड़ा करते पुण्य का कर्म इकट्ठा किया, तो जो फांसी मिलने वाली थी सूली से कांटा हो गया। कांटा तो लगा पर सूली बदल करके कांटा हो गया। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म कर रहा इसलिए दुखी हुआ, वो जो सिर फटने वाला था सिर नहीं फटा, दिमाग अच्छा रहा, क्योंकि निश्चय से भावना से शरीर छोड़ा था, वो संस्कार ने मदद की प्रोटेक्ट करने की। परंतु कर्म के हिसाब किताब में कांटा फिर भी चुभा, सूली से कांटा हो गया, बड़ी बड़ी भोगना से छोटी भोगना हो गई। और ये जो शाहूकार घर में सो कॉल्ड सुख सुविधा वाले घर में जन्म हुआ, इसको अपने अच्छे कर्मों का, दान पुण्य का, गरीबों की मदद करने का, निरहंकारी होकर के रहने का फल था, पर अभी अंत में अहंकार से शरीर छोड़ा तो भूल गई कि मुझे उल्टा कर्म करना है, उल्टा कर्म नहीं करना है, अच्छा कर्म करना है। वो लापरवाह बन गया, बेपरवाह होकर के उल्टा कर्म करने लगा। तो जितने दिन ये पाप कर्म किया है, एक एक जो सोने की गिन्नी थी वो कोयला बन गया, और थोड़ा बाकी जो है ना, थोड़ा रिजल्ट में सोने के सिक्के बाकी रह गए। हिसाब अभी ये नहीं क्योंकि पाप कर्म कर रहा इसलिए सोना मिला, नहीं, पाप कर्म किया तो सोना भी कोयला हो गया, और बाकी थोड़ा सा। कर्मों की गति को समझाने के लिए ड्रामा और कर्मा ने ये सामने सीन लाया, थोड़े से सिक्के दिखाई पड़े, बाकी कोयला हो गया, और उसका जो सूली हब थी वो सूली से कांटा हो गया। इसलिए कहा जाता है श्रेष्ठ कर्म करने के बाद न्यूट्रल कर्म करने के, अहंकार से कर्म ना करें। न्यूट्रल कर्म यानी स्वाभाविक रीति से अच्छा कर्म करे, अहंकार से कर्म न करे, तो अकाउंट क्लियर हो जाता है, चुकतु हो जाता है। तो उसने पिछले कर्मों के खाते को चुकतु किया, सूली से कांटा हो गया। इसने पिछले कर्मों के खाते को घाटे में डाल दिया, उल्टा कर्म कर दे। तो ये नहीं कि जो पाप कर्म कर रहे हैं वो सुखी हो रहे हैं क्योंकि पाप कर्म का फल है, नहीं, वो पिछला जो बाग लगाया हुआ था, जो लगाया था पेड़ श्रेष्ठ कर्म का, वो खा रहे हैं उल्टे कर्म का फल नहीं। तो इसीलिए जो दुखी, ऐसा नहीं कि जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो दुखी हो रहे हैं और जो पाप कर्म कर रहे हैं वो, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो सुखी हैं, पाप दुखी हैं, और जो पाप कर्म कर रहे हैं वो सुखी है, ऐसा नहीं है। पिछले कर्मों का हिसाब किताब है, जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कर्म, यानी वो जो पेड़ लगाएंगे तो कुछ साल बीच में चले जाते हैं, पीछे फल निकलना शुरू होता है, चाहे बगीचा लगाया है चाहे जंगल लगाया है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं बच्चे, बेशक अभी भक्ति भी करते आते हो, द्वापर से लेकर के फिर तुमने विकारी कर्म करते साथ साथ पुजारी बने, पुजारी भी बने हो भिखारी भी बने हो, पाप कर्म भी कर रहे हैं भक्ति भी कर रहे हैं, तो वो क्या है, जीवन जो है वो सदा सुखी नहीं रहता, कभी सुखी कभी दुखी। आपने तो ये सारा चक्कर समझा होगा, जो ज्ञान बहनों ने पहले समझाया होगा। तो फिर द्वापर से लेकर के बेशक भक्ति पूजा करते चले आते हैं, तो थोड़ा खेती लगाना शुरू करते हैं, थोड़ा किया फल खा लिया, एक जन्म में किया दूसरे जन्म में मिल गया, एक जन्म में किया उसी जन्म में थोड़ा मिल गया, वो खेती करते चले आ रहे हैं अब। और करते 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 वो खेती जंगल बन जाती है, कांटों का जंगल, यानी बहुत विकारी पाप कर्म करते हैं तो फिर आठ तरह का बंधन हो जाता है, जीवन बंधन बन गया, जैसे कि जंजीरों में फंस गया, कर्मों के जाल में फंस गया, फिर दुखी हो रहे हैं, जेल में फंस गए, जाल में फंस गए यानी कर्मों की जेल में फंस गए। तो आठ तरह का दुख है इंसान में। वो जो आठ तरह का सुख है ना सतयुग वाला, सत्य कर्म के कारण आठ जन्म आठ तरह का सुख है, पाप कर्म के कारण आठ जन्मों का आठ कर्म आठ तरह का दुख है। तन का कोई रोग न कोई न कोई रोग है, अचानक रोग आ जाता है, तन का रोग, मन की अशांति, धन की कमी, अचानक घाटा पड़ जाएगा, तन का रोग। दूसरी बात मन की अशांति, मन दुखी परेशान डिप्रेस, कर्मों का हिसाब किताब, फालतू सोच सोच के, चिंता वाला सोच करके मन की ताकत नहीं है, मन मलिन हो गया है, मन परेशान हो गया है, क्योंकि मन मना भाव नहीं, परमात्मा के साथ संबंध नहीं। तो तन का रोग, मन की अशांति, धन की कमी, कोई ना कोई अचानक घाटा पड़ गया, बिजनेस अच्छा चल रहा है अचानक घाटा पड़ गया, संबंध की परेशानी, अच्छा भला रिश्ता है, अच्छा भला परिवार चल रहा है, कोई ना कोई संशय आ गया, कोई ना कोई गलत फहमी हो गई, कोई ना कोई किसी ने धोखा दे करके, किसी ने चुगली करके रिश्ता खराब कर लिया। तो तन का रोग, मन की अशांति, धन की कमी, जनता की परेशानी, कुछ भी नहीं है पर रिश्तेदारों के साथ ऐसा संबंध जोड़ा, रिश्तेदारों के साथ ऐसा हिसाब किताब बना, पड़ोसियों के साथ ऐसा हिसाब किताब बना, समझ में नहीं आता क्या हो गया, दुश्मन बन गए दोस्त थे ईर्ष्या के कारण, बाकी संबंधों के साथ दुखी हो गया। तन का रोग, मन की अशांति, धन की कमी, जनता की परेशानी, फिर गवर्नमेंट का भय, राजा प्रजा दुखी, फिर चलो और कुछ नहीं, प्रकृति का प्रकोप, कोई के साथ दुश्मनी नहीं है, अचानक बाढ़ आई, अच्छा घर बनाया डूब गया, कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं कैसे, कोई कारण नहीं था, इलेक्ट्रिक आग लगी सारा जल गया, प्रकृति का प्रकोप, प्रकृति के साथ हिसाब किताब। तो तन मन धन जन प्रकृति राजा गवर्नमेंट और पिछले कर्मों का हिसाब किताब, ये सब प्रकार के बंधन है, कर्म बंधन। अब इस बंधन को छुड़ावे कौन, इसकी कैंची है ज्ञान और योग। ज्ञान की कैंची से, ज्ञान से समझ मिलती है तो पिछले कर्मों का बंधन कटता है, योग से शक्ति मिलती है अभी श्रेष्ठ कर्म करने की, इसलिए कर्म योगी बनकर रहना है। अब उसमें भी अभी समय हो गया है, मैं और ज्यादा गहराई में नहीं जाती हूँ, उन कर्मों में भी फिर और तीन तरह के कर्म होते हैं। एक होते हैं इंडिविजुअल कर्म, पर्सनल कर्म, दूसरे होते हैं फैमिली के, फैमिली बीमार हो जाती है, फैमिली की फैमिली को भोगना पड़ता है, तीसरा होता है कंट्री सारी भोगती है। इंडिविजुअल कर्म, पर्सनल कर्म, फैमिली कर्म, कलेक्टिव कर्म, सारे के सारे एक ही जेल में जाकर के सारा भोगते हैं, एक ही कंट्री में जाके वही परिस्थिति, सारी परिस्थिति एक जैसी सबकी होगी, जैसे कोई किसी ने किसी को कत्ल किया भाई बुलंदशहर में, दूसरे ने जाकर के किया भाई कलकत्ता में, तीसरे ने किसी में नवांशहर में, चौथे ने जलंधर में, पांचवे ने अमृतसर में, किसी ने हिमाचल में। गवर्नमेंट तो एक, सेंट्रल जेल तो एक है, कर्म भले अलग अलग जगह किया है, सेंट्रल जेल एक है, कर्मों का हिसाब किताब भोगना पड़ता है। तो ये बहुत गहरी फिलॉसफी है, अरे सारा का सारा परिवार दुखी है, सारा का सारा शहर तबाह हो गया है, ये थोड़े समझने की बातें हैं। इसीलिए अब इंडिविजुअल पहले अटेंशन देवे, तो मैं आत्मा परमात्मा की मत पर कर्म करूं। इसलिए श्री मत भगवत गीता, तो भगवान श्री मत देके ये गीता का ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, कर्म योगी बन के कर्म कर, कछुए की तरह रह। कछुआ चलता है तो अंग फैलते हैं, बैठता है तो समेट लेता है। कमल फूल समान बन के रहे, कमल का फूल कीचड़ में रहकर कीचड़ से न्यारा रहता है। ये तो आपने कला जीने की कला वाला जो है वो सब्जेक्ट पढ़ा होगा, मैं सुमति शिलू बहन ने क्लास कराया है, नहीं कराया है तो शायद कराने वाली थी, मुझे ऐसा सुना था कि जीवन जीने की कला शिलू बहन कराने वाली थी। तो ये फिर कैसे ऐसे रहते हुए कर्मों को समझ करके जीवन को ऐसे जीवे जो कमल फूल समान रहे और कमाल हो जावे जीवन में, सूली से कांटा हो जावे, परमात्म शक्ति से कृपा दृष्टि हो जावे, तो ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए और फिर श्रेष्ठ कर्म चाहिए। बैलेंस करने के लिए, चुक्तु करने के लिए, खाली ज्ञान और योग नहीं, कर्मों को का खाता खत्म करने के लिए फिर श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्म की समझ परमात्मा देते हैं, योग परमात्मा सिखा रहे हैं। तो जितना जितना आप ये तीनों बातों पर ध्यान देंगे तो कर्म योगी बन के कर्मातीत बन जाएंगे, कर्म भोगी नहीं, कर्म की भोगना नहीं भोगनी पड़ेगी, कर्म योगी, कर्म करते योगी बन के कर्म करेंगे। और योगी बन के कर्म करेंगे तो विकर्म खत्म होते जाएंगे, कर्मातीत, कर्मों के हिसाब किताब से अतीत ऊपर चले जाएंगे। इसलिए ये बहुत गहरी फिलॉसफी है, बहुत अच्छी तरह से समझने की चीजें हैं। फिर जितना जितना आप अपने आश्रम पर जहां जाएंगे और थोड़ा गहराई से समझेंगे तो समझ में आएगा और कर्म करने की शक्ति मिलेगी, हिम्मत आएगी, स्वमान में आप टिकेंगे तो आपके कर्म, पिछले कर्मों का खाता खत्म हो जाएगा, श्रेष्ठ कर्म जमा हो जाएगा। ओम शांति।